इरिटेटिंग अरमान। ध्रुव ने जल्दी से आगे बढ़कर प्रोफेसर प्रशांत को चेक किया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। अब आगे ध्रुव प्रोफेसर प्रशांत को वहीं टेबल पर लिटाकर उनका इलाज करने लगता है, साथ ही साथ वो उनका अच्छी तरह से चेकअप भी कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर प्रशांत की पलकें फड़फड़ाने लगी। जैसे ही उन्हें होश आया वैसे ही वंशिका पूरी तरह से टूट गई और उनके पास जाकर रोते हुए दबी हुई आवाज में बोली, बाबा क्या हुआ था आपको? बाबा ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे बताइए, ये सब किसने किया आपके साथ? कौन थे वो लोग? क्या आप उन्हें पहचानते हैं? प्लीज कुछ तो बोलिए। वंशिका की दर्द भरी आवाज़ सुनकर प्रशांत जी ने धीरे से उसका सिर सहलाया और खुद को संभालते हुए शांत लहजे में बोले, बेटा तुम तो जानती हो कि हमारा एंटीडोट प्रोजेक्ट लगभग 80% तक तैयार हो चुका था, सिर्फ 20% का काम बाकी था। लेकिन पता नहीं आज अचानक कहाँ से एक गुंडों का झुंड यहाँ आया। उन्होंने मेरे कुछ बोलने से पहले ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और मुझे बुरी तरह से मारपीट कर हमारा बनाया हुआ एंटीडोट लेकर चले गए। प्रोफेसर साहब के मुंह से निकले शब्द सुनकर वंशिका और ध्रुव को गहरा झटका लगा। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो प्रोफेसर प्रशांत को अविश्वास से देखने लगे। फिर ध्रुव प्रोफेसर प्रशांत को संभालते हुए वहां से बाहर निकालने लगता है। उस समय उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं जो अरमान के लिए बनाए गए एंटीडोट को चुराकर लेकर चले गए। क्या वो लोग नहीं जानते थे कि अरमान सिंघानिया कौन है और उससे टकराना कोई आसान बात नहीं? और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर प्रशांत अरमान के लिए एंटीडोट बना रहे हैं, ये खबर उन तक कैसे पहुंची? सिवाय घर वालों के ये बात किसी और को नहीं पता थी? ध्रुव के दिमाग में एक बाद एक सवाल आने लगे। उसके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। ध्रुव ने कुछ देर बाद अपना होश संभालते हुए प्रशांत जी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्हें सबसे पहले नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर उसने वंशिका को कुछ ज़रूरी बातें समझाईं और सीधे रौनक के पास हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी ओर अभिमान, दादाजी, आहान, आताश, सुमित, राधिका, रश्मि सब लोग परेशान होकर अस्पताल के कॉरिडोर में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे थे। वहीं दूसरी ओर आस्था के मन में भी उतनी ही बेचैनी थी जितनी हॉस्पिटल मौजूद हर शख्स के दिल में थी। वो अंश को गोद में लेकर उसके गालों को प्यार से चूमते हुए बोली, अंश देखना बहुत जल्दी तुम्हारी प्यारी सी बहन आएगी, फिर तुम दोनों खूब खेलना, ठीक है? इस पर अंश आस्था को टुकुर-टुकुर देखकर अगले ही पल मुस्कुराने लगा। वहीं अरमान खामोशी से आस्था के हर मूवमेंट को नोट कर रहा था, मानो जानना चाहता हो कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक कई सारी गाड़ियों ने आकर उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर आस्था की जान मानो हलक में अटक गई और उसका मूड बिगड़ गया। वहीं अरमान के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और उसे लोड करने लगा। आस्था घबराई आवाज में उससे बोली, अरमान ये सब क्या हो रहा है? आप बंदूक क्यों निकाल रहे हैं? और हम तो हॉस्पिटल जा रहे थे ना? अरमान ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और बंदूक की पॉइंट से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, मेरा नाम अरमान सिंघानिया है और अरमान सिंघानिया के कितने दुश्मन हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये लोग मेरे पुराने दुश्मन हैं, शायद ये कभी न कभी मुझसे हार चुके थे, इसलिए आज मौका मिलते ही मुझसे बदला लेने आ गए हैं। तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना और हाँ, कार से बाहर निकलने की गलती मत करना, समझी तुम? तब तक मैं इन्हें निपटा कर आता हूँ, अरमान ने दृढ़ स्वर में ये कहा और बाहर निकल गया। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने बेचैन होकर सोचा, क्या उसे इस घटना के बारे में सबको बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि अरमान अपने साथ आज कोई बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं आया था, न ही अब उसके साथ टाइगर मौजूद था। वो पूरी तरह से अकेला था। हालांकि अरमान अब इतना डेंजरस बन चुका था कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन आस्था ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसके पति पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था जिसकी वजह से उसकी यादें जा चुकी थी, और अब फिर से उस पर जानलेवा हमला हो रहा है? काफी दिनों से तो उनकी जिंदगी में शांति बनी हुई थी, फिर अचानक इतने सारे हथियारबंद लोग कहाँ से आ गए? ये सोचकर आस्था पूरी तरह शॉक्ड थी। ऊपर से उसे हॉस्पिटल जाने की भी जल्दी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो करे क्या। वो बाहर झाँक कर देखने की कोशिश कर रही थी। अरमान सिंघानिया उन लोगों पर पूरी तरह टूट पड़ा था। कई सारे लोग थे और अरमान जितना हो सकता था उतना ज्यादा फायर कर रहा था। दूसरी तरफ से भी नकाबपोश लोग फायरिंग कर रहे थे। थोड़ी ही देर में अरमान की गोलियां खत्म हो गई और अब वो उनसे हाथापाई का में लगा। अरमान को अकेले फाइट करते हुए देखकर आस्था पूरी तरह दंग रह गई थी। अचानक एक अजीब सी घबराहट उसके दिल पर हावी होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे एहसास हुआ, उसे अब मदद मांगने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, उसे तुरंत सबको इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। जैसे ही उसने मोबाइल निकाला, सबसे पहले उसके दिमाग में टाइगर का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसे सबसे पहले टाइगर को कॉल करना चाहिए, लेकिन टाइगर का नंबर स्क्रीन पर देखने के बाद वो थोड़ा झिझकी। वो उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि उसने खुद टाइगर को इन सब मामलों से दूर रखा था। आस्था इस वक्त पूरी तरह से उलझन में थी, लेकिन ठीक उसी वक्त आस्था के मोबाइल पर टाइगर का कॉल आता है। अब टाइगर का कॉल आते देखकर आस्था की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने फटाफट से उस कॉल को रिसीव किया। उधर टाइगर ने गहरी आवाज में आस्था से कहा, क्वीन शांति से कार में बैठे रहिए, आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। जैसे ही टाइगर ने आश्वासन देते हुए ये कहा, वैसे ही आस्था एकदम से हैरान हो गई। उसने अगले ही पल पीछे मुड़कर देखा तो उसने राहत सांस ली, क्योंकि टाइगर इस वक्त अरमान के ठीक पीछे आकर खड़ा हो चुका था। टाइगर ने बड़े ही जोरदार तरीके से उन सब लोगों पर हमला किया और धमाकेदार अंदाज में अपनी गार्ड के साथ उन्हें चारों ओर से घेर लिया। फिर उसने शांत नजरों से अरमान को देखते हुए कहा, किंग, आप जाकर आराम से अपनी पत्नी और बेटे के साथ कार में बैठ जाइए। जैसे ही टाइगर ने ये कहा, अरमान ने उस पर तिरछी नजर डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसे टाइगर की ताकत और हिम्मत पर पूरा भरोसा था। अरमान जल्द ही कार में आकर बैठ गया था। आस्था काफी घबराई हुई थी, उन लोगों को देखकर नहीं बल्कि इसलिए कि वो जल्द से जल्द रौनक के पास हॉस्पिटल पहुंचना चाहती थी। ऐसी हालत में उसका रौनक के पास होना बेहद जरूरी था। अब अरमान ने जैसे ही आस्था के घबराए हुए पसीने से लथपथ चेहरे को देखा तो वैसे ही उसने उसे तंज भरे लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, डर गई? हाँ, मैं जानता हूँ तुमने ये खून खराबा, बंदूकें, गोलियाँ, ये सब चीजें पहले कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन मैं अरमान सिंघानिया हूँ। अरमान सिंघानिया के लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, समझी तुम? मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम जैसी नाजुक लड़कियाँ इतनी छोटी सी फाइट देखकर अक्सर डर जाया करती हैं। शायद तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन देखी है, तभी तो इतनी ज्यादा घबरा रही हो और तुम्हारे माथे से इतना ज्यादा पसीना टपक रहा है। फिर वो अपनी तलवार से भी ज्यादा तेज धार वाली नजरों से आस्था को घूरने लगा। उसके इस बात पर आस्था ने आईब्रो चढ़ाई। वो इरिटेट होकर मुंह फुलाते हुए जल्दी से अरमान को देखकर बोली, टाइगर भैया आ गए हैं, वो बाकी आदमियों को संभाल लेंगे, अब हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। उसकी इस बात पर आस्था कुछ देर खामोश रहकर आस्था को तीखी नजरों से देखा, फिर उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, टाइगर हमारे साथ ही जाएगा, वैसे भी इन लोगों को खत्म करना उसके बाएं हाथ का काम है। अरमान ने टाइगर की ओर देखते हुए पूरी दृढ़ता से कहा।
आस्था को भी टाइगर की ताकत पर पूरा भरोसा था। कुछ ही मिनटों में टाइगर और अरमान ने उन सभी नकाबपोश आदमियों को अच्छी तरह सबक सिखा दिया था। टाइगर ने अरमान की सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इन लोगों को किसने भेजा था। इसके बाद वो भी सीधा कार में आकर बैठ गया, क्योंकि टाइगर को भी हॉस्पिटल जाने की बेहद जल्दी थी। अब आस्था ने जल्दी से टाइगर से पूछा, टाइगर भैया, आप यहाँ कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि हमें कुछ लोगों ने घेर लिया है? टाइगर ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, क्वीन मारिया अभी अस्पताल में एडमिट है, मेरा बेबी डिलीवर होने वाला है, और मैंने किंग के पीछे जो सिक्योरिटी लगाई हुई थी उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया था कि किंग पर इस तरह का हमला होने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ आना ही था। जैसे ही टाइगर ने ये बताया, वैसे ही आस्था के चेहरे पर खुशी और राहत दोनों के मिले जुले भाव झलकने लगे। वो मुस्कुराते हुए एक्साइटेड होकर बोली, रियली? चलिए फिर जल्दी से ड्राइवर को बोलिए कार तेज चलाने के लिए। वहीं अरमान ने कन्फ्यूज्ड होकर आईब्रो सिकोड़ी और उसने अगले ही पल सोचा, टाइगर तो कभी इतना ज्यादा बोलता नहीं था और ये इस लड़की से इतना कंफर्टेबल होकर कैसे बात कर रहा है? ये इसे ऐसे क्वीन कह रहा है जैसे ये वाकई किसी राजघराने की रानी हो। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले मामूली सी फाइट देखकर डर गई थी और बंदूक देखकर सहम गई थी, वो क्वीन कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं अरमान के मन में ये जोक ऑफ द डे लग रहा था। उसका दिल तो हंसने को कर रहा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी उसे हंसने की इजाज़त नहीं दे रही थी। फिलहाल आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी।